ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमेश्वर कबीर जी आकर के हमें यहां ज्ञान सुनाते हैं, रह रह करिए सत भक्ति हमें बताते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति करा करके और सतलोक ले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कहते हैं, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब जैसे मीराबाई जी थी वो भी एक पुण्य आत्मा थी और उसको बचपन से ही ये प्रेरणा थी, हो गई कि भगवान की भक्ति करूं। ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी दृढ़ प्रेरणा होती है। आप पिछले पुनकर्मी प्राणी हो, आपको भगवान की चाह है, बचपन से ही लगे हुए थे। ये दास भी बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था रखता था, लेकिन ज्ञान था नहीं। लोक वेद के आधार से हनुमान जी की पूजा करता था, श्याम जी बाबा की पूजा करते थे जो परंपरागत थी, राम कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे विष्णु जी को, और भगवान शंकर की भी, फिर बाकी जितने भी देवी देवता सामने आ जाते सबकी सतुती आरती, जय गणेश देवा, कभी संतोषी माता की, कभी किसी की। तो ये सब पूजाएं हम किया करते थे, क्योंकि हम रह नहीं सकते भगवान की भक्ति बिना। ये आत्मा डट नहीं सकती, पुण्य आत्मा जो होती है। तो ऐसे ही मीराबाई जी को बचपन से ही लगन लगी। अब जैसा उसको लोक वेद पता था, लोक वेद के आधार से वो श्री कृष्ण जी को भगवान मानती थी, श्री ठाकुर जी की मूर्ति का अगर डांस करती थी, रोती थी, नाचती थी, और जिसके कारण उसको बहुत सा लाभ मिला। परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु काणे, संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आणे। जब आप सत्संग की तरफ चलते हो तो कौन कौन बाधा करते हैं? मात पिता, छोटे बच्चों को, बेटा बेटियों को तो माता पिता बाधक बनेंगे, वहां नहीं जाओगे है, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हम कदे सत्संग में नहीं जाया करते हैं। तो जैसे उनको ज्ञान है, इस तरह के वो फिर बाधा करते हैं। और जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हैं, उनके बेटे आंट लावेंगे सुत, और जो कोई भगत है उनके, उसकी पत्नी आंट लावेगी पक्का। अब तो खैर समझदार बेटी होगी नहीं, पहले नहीं होगा, अगर तो वो जहा बाबा तो रबाबा बनेगा, और वह खड़द उतार देती है। हाई तो बाबा अपने का घर छोड़कर जाकर साका तार दिया करती है, अब नहीं करती ऐसी, अब साथ आती है बेटियां पर, क्योंकि ये मार्ग जो है घर छोड़न का कोना, भक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है ये केवल घर छोड़न तो नहीं मिला है, भक्ति करो घर पर रहो चाहे बाहर रहो, भक्ति करो पीछा छूटेगा। वो मंत्र दोनों ही कर सकते हैं, गृहस्थी भी और जो ब्रह्मचारी है वो भी, दोनों पार होंगे। यदि कोई इस बात मांडी पाक रहा मैं ब्रह्मचारी हूं मैं पार होगा, कि ऐसे हैं जो हमारा गुरु तो बालक ब्रह्मचारी है और वो पार होंगे, फिर हम उनको कहते थे फिर तुम इनके पीछे क्यों फिरो भाई, जब ये पार होंगे तो तुम क्यों पीछे पीछे घूम रहे हो, तुम तो हो ही नहीं सकते, डले ढो रहे हो खाम का। तो बिना ज्ञान के ऐसे ही थे। परमात्मा कहते हैं डेरे दंड खुश रहो, और ये खुश रहे लेना मोक्ष, और दुरुपर लाजमी पार होगे, फिर डेरे में के दोष, यानी गृहस्थी में कोई दोष नहीं है जब धरु और प्रहलाद को तुम पार होया मानते हो। अब धरु ने 5 वर्ष की आयु में भगवान प्राप्ति होगी थी, उसके बाद ब्याह करवाया बालक हुए, ऐसे प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति होगी थी, यानी हरदर सिंह बनकर भगवान उसकी मदद में आए थे, और उसके बाद शादी करवाई और फिर बालक हुए, कई 1000 वर्ष तक राज कराया। जो बलि राजा था बलि, जिसने अश्वमेघ यज्ञ की थी 100, जिसमें भगवान 52 रूप धारण करके आए थे उसके यज्ञ में, वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का बेटा, बैलोचन उनका पुत्र था। तो कहने का भाव गरीबदास जी कहते हैं कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान के डेरे डंडे खुश रहो, अपना घर पर रहो या कहीं भी आप हो, डेरे डंडे खुश रहो, खुशरे लहना मोक्ष। यदि केवल ब्रह्मचारी ही रहने से मोक्ष हो जाता, कहते हैं खुशरे ब्रह्म ये जड़े हैं तो सारे पार हो जाते, फिर ये तो बचकती है बाल ब्रह्मचारी है। कहने का भाव ये है कि दुराचार बुरा है भाई, उपद्रव गंदे कर्म गंदे ही होते हैं, लेकिन अपना डेरे डंड खुश रहो, संतान उत्पत्ति करो, बकवाद मत करो, अपनी भक्ति करो और पार हो जाओगे, कोई दिक्कत को नहीं। तो ऐसे मीराबाई जी जैसे कहा ना, माता पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, किसी के तो फिर बेटा बेटी वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा बेटी ना आने दे, 100 तरह की बातें उड़ाओगे संसार के, कहेगा फलान है कहां जाते हो ये नहीं वो, और फिर या फिर आन ये लोक लाज बंधु कांड, और या फिर आलस, जैसे सत्संग में चालन की तैयारी हुई, कल देखूंगा आज को नहीं चलता। एक भगत बताओ था कि एक बार मैंने कान पकड़ दिया तो जब भी छुट्टी मिला सीधा भाग गया हूं भगवान के अड़ बैठे अमृत वचन सुना। एक बार 5-7 दिन का सत्संग कराया करते हम पहले, उसने छुट्टी भी पहले दिन कहा था ये भगवान छुट्टी मिल जाए मैं 7-8 दिन सत्संग में सुनूंगा, वह छुट्टी मिलगी, नौकरी करता था। बोला मैंने सोची कल देखूंगा कल चलूंगा, और नीत न्यो थी लास्ट में 1-2 दिन चलूंगा, इतना रेस्ट करूंगा। अब जिस दिन सत्संग शुरू होना था उस दिन उसका दूसरा सत्संग शुरू हो गया, वहां उसकी बहन का बटेऊ आ गया, उसका जीजा, वो आगे ने बोला मैंने भैंस लेनी है। अच्छा ले भाई, उसने नाट्य क्यों करे ना, ताजी ताजी रिश्तेदारी, पहले तो उस गांव में दिखाई भैंस नहीं समझ में आई, फिर किसी ने बताई कि वहां और गांव है 20 किलोमीटर, वहां गए फदर फदर की तरह पैदल कुआं बसा बैठे, यानी जिस दिन भोग लग गया उस दिन उल्टे आए और भैंस भी ना मिली। जब घर ना आए 7वें दिन धक्के खाकर कि गोबर में रोटी की तरह रोटी मिली कि ना मिली, तो उस दिन पाछे ने बोला मैंने कान पकड़ दिया कि पाछे नहीं रहूंगा यहाँ पर, ये तो और वो जहां मैंने आनंद लेना था परमात्मा का लाभ मिलना था उसके स्थान पर इस आलस ने मेरी और रिहर्सल करवा दी। तो यहां परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, और किसी का पति अपनी पत्नी ने फांसी घाल के बैठ जाए है तो नहीं जाएगी, न्यू है रो है, तो कहने का भाव है ये काल के ही अड़चने हैं, और ये काल की अड़चन इसलिए है कि यू भक्ति ना करे, संतों के पास ना जावे, और यू यही मर खप के और गदा कुत्ता बनकर धके खानता रहे। काल ये चाहता है और भगवान ये चाहता है परमात्मा कि ये परमात्मा की प्रेरणा में कहीं ना कहीं जाते रहे। मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते। अब जैसे हरिद्वार के अंदर पीछे कोई वो ऐसा समागम, ये मेला कोई था, कुंभ का मेला था या कोई इसका ग्रहण का स्नान था, एक बार कुरुक्षेत्र में था, तो हमारे भक्तों गए वहां पर। ये परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भाई बहनों को चाहते हैं कि ये भी काल के जाल से निकल जाए, तो वहां उन्होंने पुस्तक वितरित की थी, बांटी थी, 10-10 रुपए में बेची। वैसे तो ये है भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुक है, ये हमारे को बहुत ज्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपए में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपए में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले, लेकिन फ्री तो ले हैं, उठा के किधर फेंकते हैं, फिर वो दुकानदारों के पास रद्दी के काम में पड़ी पाई हमने, तो इसलिए हमने इसका 10 रुपए रेट रख दिया दोनों का, ये दोनों कट्ठी जल्द करवा दी कि कम से कम 10 रुपए खर्च करेगा तो पड्डे बीगा। तो कुरुक्षेत्र में दी जाकर बांटी कई हजार, 14-15 हजार बुक वहां बेची, तो उससे फिर रिजल्ट आया। अब पुण्यात्मा आते हैं, इसको पढ़कर रक्त रेगी कहां डले ढोरे थे, बड़े खुश होते हैं, आते हैं, पूरा परिवार का परिवार नाम ले जाता। क्या बताते हैं जी, कुरुक्षेत्र नहान गया था वहां तेरी आपकी किताब मिली थी, कोई कहता मैं हरिद्वार गया था वहां से किताब मिली थी, मेरी आंख खुल गई, डले डोता हंडो था। तो परमात्मा कहते हैं तो ये प्यारी आत्मा सत्संग की कोई ना कोई आड़ पकड़े ही रहती है और लगे ही रहती है, और काल नु चाहता है कि ये गलत साधना करें, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते रहें, जिससे इनको कोई लाभ ना हो और लास्ट में ये नास्तिक बन जा, कोई गुट्टी लाने लग जा, कोई चोरी करने लग जा, कोई बदमाशी करे, क्योंकि इनकी आस्था हट जाएगी भगवान कहीं नहीं है। अब जैसे पूरा चीन कम्युनिस्ट बन गया, जबकि पहले महात्मा बुद्ध का पुजारी था, अब उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधन से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो नास्तिक बनकर अपना सिद्धांत बना लिया मनुष्य ने। तो काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जाए, और वो कबीर साहब का कभी आवे लगे गेड़ा तो कोई सुने ना उनकी बातों को, और परमात्मा रह रहकर अपनी सत्ता को, अपनी सतीथी को स्थापित करके जाते हैं, वो कोई रूप बना कर आ जाते। एक बार अब मीराबाई जी छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी की पूजा में लौलीन हो गई थी, फिर उसकी शादी कर दी। उसका पति जो था वो राजा था, जब उसकी 4 वर्ष शादी को हो चुके थे, उसका संतान नहीं हुई, तब उसके पति की मृत्यु होगी, वो विधवा होगी, और उसका देवर, ये ठाकुर समाज में इनका शादी थी, जन्म था, और ठाकुर समाज में क्या था कि उनकी बहन बेटियां बहू कहीं बाहर नहीं जाती थी, वो स्वयं ही बाहर से जल लाते थे पानी भी, वो तो खैर राजा थे, उनके नौकरों की कमी नहीं थी, वैसे भी ठाकुर समाज में अपनी बहन बेटी बहुओं को बाहर नहीं जाते, जाने देते थे, पर्दे में रखते थे, वो अपनी इज्जत समझते थे कि हमारी इज्जत बाहर नहीं जाओगी, स्वयं सारा कार्य करते थे। ऐसे समाज में काल ने उस पुण्यात्मा को फिट कर दिया मीराबाई जी को। अब मीराबाई जी मंदिर में जाती थी, उसका पति जो था वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, बहुत नर्म आत्मा का था, राजा था, तो मीराबाई मंदिर में जाती थी, तो कुछ एक लोगों ने विरोध किया, घर वालों ने भी, गांव वालों ने भी, चर्चा चली सुरसुर, तो उसको मना किया, कहा कि इसको मना करो, ये सत्संग में ना हुआ मंदिर में ना जावे, हमारी इज्जत है। तो मीराबाई से उसके पति ने एक आध बार कहा भी कि आप यही भक्ति कर लो, तो वो कहने लगी नहीं जी, मैं तो, मेरी तो आस्था ठाकुर जी में है, हमारी सबकी ऐसी श्रद्धा थी कि मंदिर में भगवान है। ऐसी दृष्टि से मीराबाई कहने लगी जी मैं तो मंदिर में जरूर जाऊंगी। तो उस प्यारी पुण्य आत्मा ने ज्यादा विरोध नहीं किया, वो भगवान से डरने वाला था, तो उसके रहते वो मंदिर में जाती और आती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर जो है, उसके पति का छोटा भाई, वो राजगद्दी पर विराजमान हो गया, और उसने मीराबाई पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू मंदिर में नहीं जाओगी। वो कहने लगी देखो जी मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं भगवान बिना रह नहीं सकती। उसने हर तरह से उसको समझाना चाहा कि तू हमारी इज्जत है, पहले तो भाई जीवित था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये भाई जीवित है नहीं, दुनिया पता नहीं के की बात बनाएगी और मैं तुझे कति अलाउड नहीं करूंगा। वह बोली जी आपकी मर्जी कुछ भी करो, मैं तो जाऊंगी, मेरा दिल नहीं, मैं नहीं रह सकती भगवान बिना, मैं वहां जाऊंगी मालिक के दरबार में मंदिर में। अब उसने बहुत कुछ कहा पर ना मानी, तो उसने सोचा इसको मार दूं, न्यू वैसे सीधा मारूंगा तो बदनामी, फिर इसके माता पिता भी रिश्तेदार भी फिर मेरा विरोध करेंगे, कोई उपद्रव ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से उसने और चाल चाली, उसने क्या किया कि एक दिन अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष में रिश्तेदार भी इकट्ठे कर लिए और उधर से एक इस जो सर्प रखता सपेरा उससे बात कर ली कि एक ऐसा सर्प ला दे जो एक बार डसते मर जा आदमी, पानी ना मांगे। तो सपेरे ने ऐसा ही सर्प ला दिया कि ये लो जी, एक बार उसमें बंद कर रखा था एक जो गहने होते हैं ना, गहने का एक बॉक्स होया करता पहले, डब्बा अलग से बड़ा इतना का, क्यों कई तरह के गहने था मैं चांदी के इतना बड़ा होया करता बॉक्स हमने देखा, और उसमें रख दिया कि इसमें डाल दिया है और इसके खोलते माथे में डंक मारेगा यो, और मारते ही फिर पानी भी नहीं मांगे। तो उसने गहनों के डिब्बों में वो सर्प बंद करवा के और बंदी द्वारा नौकरानी द्वारा मीरा के कमरे में भिजवा दिया, जिस दिन सब रिश्तेदार आ चुके थे और सुबह सुबह और शिरोमणि बनानी थी, और उसको कहा कि मीरा को कह दे इसमें हार है, इस हार को गले में पहन लेगी ना मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा, लोग न्यों कहेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी भाई की पत्नी को कोई अच्छा उड़न पहनने को नहीं दे रहा, दुखी करता है, मेरी इज्जत का नाश ना कर दे, नो कह दिए साफ स्पष्ट। वो नौकरानी वो हार लेकर वो गहनों का डिब्बा लेकर गई, नौकरानी को भी नहीं पता था। उसने कहा कि मीरा ऐसे ऐसे राणा ने कहा है और ये इसमें हार है बहुत कीमती, तू पैर लिए, आज रिश्तेदार आए हुए हैं और नहीं पहनेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और आज इसको जरूर पहनना तू। लेकिन मीरा बाई नहीं पहना करती थी, उसको हार श्रृंगार में कोई रुचि नहीं थी, ये तो बनावटी काम है जो नकली लड़कियां करती हैं जिनको भगवान से डर नहीं ना ज्ञान क्या है का। तो उसने वह बोली रख दे मैं आप पैर लूंगी, उसने रख दिया। अब मीरा बाई ने सोची जब ना पहनूंगी तो यू तंग करेगा तने और गुणा, और मेरे लिए तो माटी है या यह दुखी करेगा मुझे और खाम का बात बढ़ेगी, मुझे टेंशन बनेगी। उसने सोची सार ने पैर लेती हूं, दो घंटे गाल लू गलो में इस मट्टी ने। तो यूं करके उन्हें डिब्बा खोला, उसमें एक जो हार था वो हार नहीं था, वो सर्प का हार बन गया, इतना सुंदर हार बन गया सर्प का, गले में डाल लिया। अब वो तो साथ साथ आ लिया थोड़ी देर पीछे, अगमरी पावेगी और सांप वहीं पाओगा कि कमरे में लोग कह दूंगा सांप लट गया, वो तो बात तो नहीं कर सकेगी क्यों यार के नहीं, और बंदी को धमका दिया था जिक्र नहीं कर देगी कितने भी कुछ हो जाता है, यानी चुप हो जाए तो कुछ नहीं बताना किसी को, कुछ किसी तरह का उसको ऐसा कह दिया था कि तू रख के आ जाना और वहां जिक्र नहीं करना। तो उधर से वो गया साथ में, मीरा बाई उस हार को पहने बैठी जो सर्प से कन्वर्ट हुआ था। अब वो कहता है, वो राणा कहता है कि यू हार कहां से लाई तू बदौरत, ये हार कहां से लाई इतना कीमती कि मंदिर में जाती है वहां बकवाद करती है तू, वहां से ये हार लाई है। वो कहने लगी जी ये हार आपने ही भेजा था, इस बक्से में था, तो कहता क्या बात कहती है, कहा जी इसमें था, इस बक्से में। और बंदी बार गेट में नौकरानी बैठी थी, वह बुलाई कि कहा वो बक्सा की भी यही है जी, और अभी इन्होंने खोला था, मैं बाहर खड़ी थी, मेरे मुझे आवाज आई थी, इन्होंने अभी खोल के पहना है। अब उसके पांच रत्र की धरती निकलेगी, रत्रा गजब हुई हो, और अपने हाथों वो सर्प इसमें रोक के भेजा, रही हार बन गया, आ गया कि भैया नहीं मरे। अब उसने क्या सोचा कि एक वो बुला लिया, ये सांप के सांपों का इलाज करने वाला गारडू, और उससे कहा कि तू ऐसा सर्प ला दे, ऐसा विष दे दे मुझे कि यह इसको पीते मर जा। तो उसने कहते हैं कैसे इतना जबरदस्त विष दे दिया लाके कि एक बार ओठ का जीभ का भी ला दिया ना, एक घूंट भी अंदर ले जाएगी तो भी मर जाएगी, बोल नहीं सकेगी। अब उसने क्या किया, उसके देवर ने राणा ने वो सर्प जो जहर था विष था, ये कहते हैं सर्प से निकालना था जैसा भी, तो वो सर्प वो जहर विष लेकर के वो राणा और साथ में आत्मा तलवार लेकर और मीराबाई के पास पहुंच गया कुछ दिनों के बाद कि इस जहर ने पी ले ये प्याला पकड़े और नहीं पीवेगी तेरी गर्दन काटूंगा। अब मीराबाई ने सोचा गर्दन में तो दर्द होगा तलवार ते, मरना तो सही हूं, मारे तो गाय तुझे, तो जहर पी लू दर्द तो ना होगा, तो नोक सोचकर और उसकी आंखें आ गई, नौका नु जहर का प्याला पी लिया, वो विष पी लिया, और वो देखे बाट की लुड के गया और वो आराम से बैठी है, कोई दिक्कत नहीं। मीरा बाई को मारने लागे जहर का प्याला, प्यारे पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सरद ही यारे, मन तू पावगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो जहर ने उत्पात मचाना था, अशांति फैलानी थी, कहते हैं पीवत ही अमृत हो लाग्या, और हो गया सरद ही यारे, यानी अंदर ठंडक होगी विष्ट। अब उसने सोची भैया तो नहीं मरे, कमाल हो गया, या बिना मरी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मीराबाई मंदिर में जा रही थी और कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, देख काल ने उस प्यारी आत्मा को कहां ठोक दिया था, और परमात्मा कैसे पीछे पीछे फिरते हैं उस पुण्य आत्मा के। रविदास जी, संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी समकालीन थे मीराबाई के, और ये दोनों इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी कबीर परमेश्वर का ही शिष्य हो गए थे। जब पहले तो रामानंद जी से उनको उपदेश दिलाया कि रामानंद जी की फड़का डी के अरिजना नाम ना दे था सो शेड्यूल कास्ट को, फिर कुछ दिनों के बाद रविदास को पता लग गया कि भगवान तो ये हैं, रामानंद जी के पास ना कुछ, तो रविदास जी ने कबीर परमात्मा से उपदेश ले लिया था। अब ये दोनों वहां जिस मंदिर में मीराबाई प्रतिदिन जाती थी उसी के पास बाहर सी था वो, वहां बाहर इन शेड्यूल कास्ट की कुछ चौपड़ी सी थी, वहां सत्संग करन लाग गए रविदास जी और कबीर जी। मीराबाई पहुंच गई, अब यहां कुछ भगत बैठे हैं, चल 10 मिनट चर्चा सुनांगे इस परमेश्वर की। तब परमात्मा ने परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, मीराबाई को धक्क देसी हुई कि मैं तो कृष्ण से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानती, और महाराज जी तो कृष्ण जी से ऊपर और बहुत सुप्रीम पावर बताते हैं। तब उसने करबद्ध होकर कहा, महाराज जी हमने तो कभी यह बात सुनी नहीं थी, आप ये बताते हो, इसका कहीं प्रमाण है? मैं तो श्री कृष्ण जी को मानती हूं। परमेश्वर ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, वो कहती थी कृष्ण जी मेरे पास आते हैं, सामने दिखाई देते हैं मुझे, साक्षात बातें करते हैं, पर तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, उस तो ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। और जब तेरा श्री कृष्ण कह दे फिर के करेगी, फिर मैं आपके चरणों में आ जाऊंगी महाराज, मन तो आत्मा कल्याण करवाना। जैसे आप बता रहे हो भाई इनकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु, इनकी पूजा करने से भी फिर यही रहेंगे, मैं तो इस जन्म मृत्यु के रोग में कति रहना नहीं चाहती भगवान, मैंने देख लिया खूब अड़क कोई किसी का कोई। और ब्याह होया खुशी मनाई, 4 साल में पति मर गया, बताई किस पे खुशी मनाऊ, यहां पर के चीज है जो अपनी मानू मैं, कति मेरा दिल हट चुका है इस गंदे लोक तह। तो उसने फिर लागी पुकार कर रोने लगी, श्री कृष्ण जी प्रगट हुए, उनसे पूछा प्रभु आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है, मेरा मेरी आत्मा दुख रही है कि वो मेरे भगवान से भी ऊपर कोई शक्ति बता रहे। पुण्यात्माओं ये देवता झूठ नहीं बोला करें, इसलिए इनको देव कहते हैं, अच्छी आत्मा होती है। इसने कहा मेरा भाई वो शक्ति बहुत प्रबल है जिसके विषय में संत बता रहे हैं, पर वह मिला कति नहीं, हमने भी खूब ट्राई कर ली और कई कई हजार वर्ष तक साधना कर ली, वह मिलता नहीं। मीरा बाई बोली सत्साह महाराज जी बस ठीक है, अब क्योंकि जब परमात्मा वो कह रहे हैं हम उस परमात्मा से आपके साक्षात्कार करा दें, उससे मिलवा दें, ये काम ने मिली है कोई ना, और ये भी मानते हैं कोई और पावर है, कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही होता है। उसी दिन उसने आके अगले दिन चरणों में गिर गई, परमात्मा कहे मुझे उपदेश दो प्रभु। अब कबीर जी ने सोचा या ठाकरों की लड़की है और कदे इसमें अभिमान शेष रह जा, क्योंकि अभिमान नी व्यक्ति को भगवान नहीं मिल सकता, ये नियम है चाहे कितनी साधना कर ले। सबसे पहले भी नम्र और एक दृष्टि होनी चाहिए, ना ऊंच नीच कोई बुरा नहीं, जैसे छोटी जाति कोई नहीं, ऊंच नीच इस विद है लोई, भाई कर्म को कर्म कहां में दोई। ऊंच नीच इसलिए इस तरह माना जाता है जो पापी पाप करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, सुल्फा पीवे, चोरी करे, डाके करे, वो किसी जाति का वो नीच है, और अच्छे काम करे, बुराई से दूर है, भक्ति करता है, वो ऊंच है चाहे वो किसी जाति का है, ये संत विधान है, प्रभु का विधान है। ऊंच नीच इस विद है लोई और कर्म कुकर्म सुकर्म कुकर्म कहां में दोई। सुकर्म करते हैं वो ऊंच है और दुष्कर्म करते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो वह नीच है। तो ये दृष्टि उसकी देखनी थी, इस बेटी में कितना विवेक है। रविदास जी से कह दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की ने भेजूंगा और उपदेश दे दिए इसने, पहला मंत्र दे दिए। तो वो मीरा बाई गई कि महाराज जी मैंने पता मेरे कृष्ण जी भगवान आए थे और मेरे से बात होगी, वो कहते हैं कि ऊपर है वो शक्ति पर तुम्हें मिला नहीं, और आप कह रहे हो मिला, परमात्मा बोले गारंटीड बेटी या कौन सी बात ना मिले, इन कृष्ण जी और को ज्ञान नहीं कोई ना उस परमात्मा के बारे में, इन विष्णु और कोई भी ज्ञान नहीं है। पुणात्मा ये बात आज तो हमें उसमें भी खटकती थी, लेकिन उसका तो शंका निवारण कर दिया था, वह खुद आकर कहेगा जब कि उसके पाने की विधि हमने नहीं मिली आज तक। तो मीराबाई कहने लगी प्रभु अपनी बेटी को उपदेश दे दो। अब परमात्मा बोले जा बेटी वो बैठा भगत वो देगा नाम। अब वो मीरा भाई क्योंकि कंप्यूटर का की तरफ संकेत कर दे डॉक्टर तो मरीज तो दौड़ जा बैठा ले दवाई दे दे भाई। तो रविदास जी के पास गई कि महाराज मुझे उपदेश दे दो गुरु मुझे शिष्य बना लो। रविदास बोला बेटी बात सुन बहन, मैं हूं चमार जाति ते और तू है ठाकरों की बेटी, तेरे साथ ना बहुत बुंडी कर देगा समाज, मैं उपदेश नहीं दे सकता आपको, मैं चमार जाति से हूं। मीरा बाई बोली महाराज जी आग लगे संसार के, आप मेरे पिता मां आपकी बेटी मन या जड़ी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूं मुझे भगवान चाहिए। तो परमात्मा ने संकेत कर दिया हक दे दे, ये देखना चाहवा थे इसमें कितना विवेक है। रविदास जी से प्रथम उपदेश परमात्मा ने मीराबाई को दुआया। ये एक आपको ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, पहले आपने कथाएं सुनी थी लेकिन इनकम्प्लीट सार रहित, इसका निष्कर्ष कहीं नहीं निकाला किसी ने, था ही नहीं किसी को ज्ञान। अब जैसे एक स्पेयर पार्ट की दुकान में सारे स्पेयर पार्ट रखे, अब जिसने जानना नहीं वो कुछ किस किसी ने कितना धर रहा है वो नारे नारे रख रहा है यो सटेरिंग है यो पिस्टन है ये फलाना है बस। और जो इंजीनियर है उन्हें ला कर करके इकट्ठे गाड़ी बना के और टी टी करता ले जाएगा। तो ऐसे तत्वदर्शी संत ये कथाएं भी आपके पास थी, ये ज्ञान भी थे, स्पेयर पार्ट जेन्युइन थे, ये कथाएं थी, ये अपने सदग्रंथ थे, इनमें जो ज्ञान था ये जेन्युइन स्पेयर पार्ट थे। ये तत्वदर्शी संत इसकी गाड़ी बनाकर राम नाम की और अपना सतलोक चल पड़ेंगे। फिर वो पहले तो वह दिन में जाया करती मंदिर में, अब वहां परमात्मा कई दिन डट गए, फिर रह रहकर फिर आ जाते दोनों जने कई संस को कूब तैयार करके फिर दूसरा नाम भी देना है, आगे भी इसको तैयारी करवानी है। तो फिर वो रात में सत्संग करते परमात्मा, दिन में धंधा करते मजदूर लोग, शाम में अपना सत्संग सुनते। तो मीरा बाई फिर रात न जाने लाएगी उस जहां वो सत्संग हुआ करते थे। अब उसने राणा ने उसके देवर ने सोचा पहले तो दिन में गड्ढा करती, चलो तो दिन आली भी माटी पड़े सी भी रात न जान लगी, अब बता दुनिया के थूकेगी अपने और मार ली सारे काम कर लिया मरती नहीं। तब उसने उसकी मां को बुलाया और उसको समझाने के लिए प्रार्थना की। तो मीरा बाई और उसकी माता का कैसे संवाद होता है, पुण्यात्मा मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चलाइए अटका में आण, इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसाए। इस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए आपको ये कथा सुनाई, क्या बताते हैं, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राह में आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही, आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही, जब सतगुरु की मेर फेरी, जब गुरुओं की मेर फेरी, आरी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा आरी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हरी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय मे, थारे सत्संग के राय मे, आए वा तो रहते हैं बब्बर शेर, कोए कोए शेर तन खालवे, आए वा पर रहते हैं बबरी शेर, कोए कोए शेर तन खालवे, जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरु आरी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा, आरी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, हाये मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है, आए वाप रहते हैं साधु संत, कोए कोए संत तन ले रम है, आए वाप रहते हैं साधु, कोए कोए संत तन ले रम है, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के बीच में हे, थारे सत्संग के बीच में, आए वाप रहते हैं साधु संत, कोए कोए संत तन ले रम हे, आए वाप रहते हैं साधु संत, कोए कोए संत तन ले रम हे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता, संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में, आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में, ए हाए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो हसन, सारे सतसंग में मेरा ना छुटे। वो तो हो जाति च मार है हे, वो तो हो जाति च मार है, इसमें हमारी आर है हे, इसमें हमारी आर है, तेरे री लेख मता चमार है री, तेरे री लेख मता मेरा सृजन आर है री, मेरा सृजन हरी हारी। वो तो मीरा के गुरु रविदास, सतसंग में जाना मेरा हारी, वे तो मीरा के गुरु रविदास, सतसंग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी वे तो मीरा के सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे हे, सतसंग में जाना मीरा आए मारी लोग करे तकरार, सतसंग में जाना छोड़ दे, सतसंग में जाना मेरा ना छुटरी, सतसंग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़ के भरोसन, सारे सतसंग में जाना ना छुटरी, हारी चाहे जड़ के मरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छुटरी। सत्साही अपना आत्माओं, जिनको भगवान चाहिए वो पीछा मुड़ के नहीं देखा करते। संत, शेर और सिपाही, इनका धर्म आगे को ही बढ़ना होता है और तभी सफलता पाते हैं। शेर सिंह और संत और सिपाही सूरमा उल्टा नहीं अटैक करते, नहीं तो कायर कल आवे अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो प्रसंग चौरासी जैसे कि ये इस प्रकार की बाधाएं प्रत्येक प्राणी को आती हैं, क्योंकि काल नहीं चाहता ये सत साधना कर ले और पूरे खड्डू करवा दे है उस भगत को भक्ति से हटाने के लिए। और परमात्मा भी कच्चा काम नहीं छोड़ता, ये भी साथ रहता है कि भक्ति की आस्था मेरी आत्माओं में तो खत्म ना हो जाए। इसलिए कहीं कहीं किसी ने रूप में आके प्रगट होकर अपनी लीला करके दिखा जाता है भगवान इसे काम करा गया। अब यहां प्रसंग उठेगा अपने आत्माओं आपके दिमाग में कि भाई मीरा बाई अब जैसे श्री कृष्ण जी की साधना करती थी भगवान विष्णु की और मनमाना आचरण करती थी, कि उसने कोई गुरु गुरु तो था ही नहीं, अपने जो भी किसी तक सुन लिया वो मंत्र जंत्र शब्द उसके बनाकर गाया करती थी, महिमा गाती फिरती थी, और फिर भी इतनी मदद होगी, उसकी मृत्यु नहीं हुई, जहर का प्याला प्या दिया उससे नहीं मरी, और सर्प का भी हार बन गया 9 लक्खा हार कीमती। तो क्या ये भगवानों की भक्ति से हमें मोक्ष नहीं हो सकता? पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान के दर्पण में जब देखांगे दूरबीन से तब समझ में आओगे कहानी क्या है। पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही पुण्य कर्मों से ऐसे वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अपनी उस प्यारी आत्मा के संस्कार वश ऐसी मदद करता है ताकि भक्ति की आस्था भगवान में, भगत की आस्था भगवान में बनी रहे। और उसके पुण्य थे ऐसे, उसको बचाना था मालिक ने, कबीर जी ना आकर परमेश्वर जी ना आकर उसकी रक्षा की। अब ये एक बात विचार करना, अब जैसे महाभारत में एक कथा आती है, कि एक टटीरी नाम की एक टटीरी थी, पक्षी होता टटीरी, और उसने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए जमीन पर, और उधर से महाभारत का युद्ध होने के लिए सेना इकट्ठी होने लगी। तब उसने प्रार्थना की, ना तो राम की भक्ति जाना थी ना कृष्ण की, ना कि तो मंदिर में जा थी ना गुरुद्वारे में। अब उसने अर्ज की है, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का स्वर्ग से एक वो घंटाला टूट गया, पहले से तगड़े तगड़े हाथी हैं इंद्र के, बहुत बड़े बड़े और काफी बड़ा घंटाला, ये टाली बजाया करना जैसे मंदिरों में देखियो, इसका समझे बहुत बड़ा प्रारूप, बहुत बड़ा हो जाओ घंटा। जैसे आप इस मोबाइल फोन में देखते हो अलार्म बजा कर इसमें घंटी ही बाजें छोटी छोटी, ऐसे बहुत बड़े हाथी के बंदे होते थे, जैसे हाथियां के तौर भी घंटाड़े हाथी एक एक मण के होंगे पूरे बड़े बड़े, और उस स्वर्ग के देवता इंद्र के हाथी का तो कई मण का था, वो हजारों मण का बताते हैं। तो वो आकर टूटकर उस अंडा के ऊपर पड़ गया, वो ना तो उन पर हटे किसी पर और ना उन कोशिश की उसके बराबर का युद्ध होता रहा, जहां 18 करोड़ सेना आपस में लड़कर मर गई, 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की, और उन अंडा के आंच भी नहीं आने दी। वहां कतलेआम हो गया, आग लगी, अग्निबाण छूटे थे, और टटीरी के अंडे बचा दिए। उसकी पुकार करने थे, वह किसकी भक्ति करे थी, पिछले ही पुण्य से होत है पूर्ण हंस मुराद, और करता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पावर बताई है प्रभु स्वामी, एक सरपुरुष, सरपुरुष यानी यु ब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म, और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसके विषय में, इन दोनों के विषय में कहा है कि ये भी नाशवान है, इनके सथुल शरीर, और इनके प्राणी जितने इनके लोक में उनके भी शरीर सथुल नाशवान है, ये नाशवान है, केवल जीव आत्मा विनाशी है। और फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और ये लोक तरण अविशवर्ती अवैश्वर, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, और वही भगवान परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी किसी के आपत्ति भी आती है तो वही परमात्मा आकर गुप्त रूप में उसको निवारण करता है, नथिंग एल्स और कोई नहीं कर सकता। अब ये दूसरी बात है कि जैसे कोई वो अपने आप बड़ाई नहीं लेता, जैसे नरसिंह रूप बनाकर आए थे प्रहलाद की रक्षा की परमेश्वर कबीर जी ने, और वो विष्णु जी का पुजारी था और विष्णु रूप धारण कर लिया आखिर में, ताकि इसकी इसका दिल डटा रहेगा, और अब तक इन विष्णु जी का बोलबाला हो रहा था, उस विष्णु जी ने न्यो कर दिया, विष्णु जी ने न्यो कर दिया, कि विष्णु जी अपनी रक्षा ना कर सके, श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार पूरा कुल आपस में लड़कर मर गया, विष्णु रक्षा नहीं कर पाया। यादव कुल द्वारका में कति दुर्वासा के श्राप से सारे कटका मर गए आपस में झगड़ा करके। तो अब ये समझ में आती है कहानी, तो यहां मीरा बाई की जो रक्षा हो रही थी वो भी परमेश्वर कर रहे थे, थी उसके पिछले पुण्य। अब यदि वो सदभक्ति नहीं करती मीरा बाई, कुछ दिनों में वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती और अगले जन्म में वह पशु योनि में जाती, लेकिन ऐसी प्यारी आत्माओं को परमात्मा आके संभालते हैं और उनको फिर रिचार्ज कर जाते हैं। अब मीराबाई सत्संग में आने लगी, आती रही, फिर ज्ञान हुआ मीराबाई को पूरा ज्ञान हुआ। रविदास जी ने कहा बेबे बहन बेटी, ये परमात्मा आ रहे हैं और इनसे उपदेश की प्रार्थना कर तू, ये कबीर जुलाहा, इनसे नाम ले, पूर्ण मोक्ष मार्ग इनके पास है और मेरे पास मार्ग नहीं है, ये तो एक लीला की थी आपको परमात्मा की तरफ खींचने की, और आपको ये दिखाना चाहते थे कि देखना चाहते थे, तू भगवान चाहती है समाज चाहती है, बेटी आपने सचमुच आप अधिकारी हो, भगवान ने चाहा अपने समाज को नहीं देखा। तो फिर कबीर परमेश्वर जी ने उस प्यारी आत्मा को सतनाम प्रदान किया। और उससे क्योंकि जिसको सतनाम दिया जाता था वो अति अधिकारी होते थे और उनसे सौगंध खिला दी जाती थी, इसका जिक्र नहीं होगा कितने भी बता नहीं देगी कितने, यदि तूने ये बता दिया तेरा नाम खंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, भक्ति नहीं रहेगी। तो जिसने भगवान चाहिए वो तो लाल है, उसकी छाती के लाए फिरेगा, कौन देगा दूसरे तई, मूर्ख आदमी होगा, क्योंकि परमात्मा ने स्मारक को यहां छुपा के रखना था। अभी तक ये मूल ज्ञान को मूल नाम को छुपा के रखना था, कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जिससे उनकी कल्याण हुआ। अब मीराबाई ने जब ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, और उधर से उसके देवर का की गुरकी खत्म नहीं हुई, कभी किसी बात पर टोक रहा है, कभी किसी बात पर बकवाद करने से नहीं बाज आ रहा है, तो उसने घर त्याग दिया। अपुणात्मा अभी तक आपने जो मीराबाई के बारे में यही सुना था, कच्चा पक्का सा ज्ञान, अधूरी सी कथाएं थी। अब एक बात विचार करने की है कि ये थी मीराबाई जी उस समाज के दबाव में आके और भक्ति मार्ग से हट जाती, आज मीराबाई को कोई याद नहीं करता, ना जाने कितनी बहन बेटियां मरती और कुतिया बनी अंडे, वो खानदाना की बहू दोनों की हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, जब सत्संग में हमारी बेटी बहू चली गई थे, वो कुतिया बनी अंडे। क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। कबीर परमेश्वर जी के, गरीबदास साहेब जी कबीर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या सेकंड करते हैं, समर्थन करते हैं। पड़दे बीबी रह थी और डोडी लगे थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो बीबी बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां, पर्दा में रहा करती थी, एड्डी से लेकर चोटी तक, या वैसे गेट पर पर्दा रहता था और सामने डोडी लगा करती थी, औरतें वहां बैठा दी जाती थी कि इधर कोई पुरुष प्रवेश ना कर जा, या ऐसी वैसी स्त्री ना आ जा जो कोई हमारे पुत्र वधु को या पत्नी को कोई चर्चा ना कर दे, किसी चीज की मिसगाइड ना कर दे, लड़ाई करवाए जाए, इस तरह की बहुत प्रतिबंध होते थे और घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ऐसे ही ठाकुर लोग भी अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो क्या बताते हैं कि वो बीबी पड़ दे रहा करती और सामने पहरेदार खड़े रहा करते, और सत्संग आदि कहीं जाने से मनाई होती थी कि हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहन बेटी बाहर चली गई तो सत्संग सुन दे। आज वही बहन बेटियां मृत्यु के बाद कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, सैर सपट्टे कर रही हैं, धर्मशाला का आगे के बाजार के अंदर सरेआम घूम रही हैं। बीबी पड़दर रहे थी, वह डोडी लगा थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हम बने कुतिया बाजार, वो पड़दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गा तो गाड़े फिरती हम कर सरा मसोर। अब वो कुतिया बनकर वो राजा की रानियां और उच्च घरानों की पत्नियां, बेटियां, बहन बेटियां कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने, और एक रोटी के एक ग्रास के लिए अतिथि खाना खा रहा है, वो मुंह की तरफ देख रही है, न्यू शायद अब के टूक तेरी तरफ आवे। और जब वो मनुष्य जीवन में थी वो नालायक आत्मा काजू किशमिश के और बादामों से युक्त हलवे खाया करती, खीर और झूठे छोड़ा करती, क्यों पिछला पुण्य था, और उसके झूठे छोड़े होकर नौकरानियों के बच्चे और नौकरानियां खाती थी, और आज परमात्मा की भक्ति ना करने से वो एक टूक के लिए तरस रही है, क्योंकि अब बैटरी डिस्चार्ज होगी, पहले पुनों की हुई थी, आगे चार्जर लाया नहीं। और जैसे अतिथि खाना खा रहा है धर्मशाला में सराय में, और वो देख रहा होता कुत्ता, देखना कभी कुत्ते की एक्टिंग, रोटी खाते समय नो नो देखे, अगर साहिब डालेगा और मान ले को डाल भी देता है टूक, ऐसे रेत में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो एक टूक के साथ, वो राजा की रानी व उच्च गरी की बेटी अजकुतिया बनके। जो परमात्मा से दूर हैं। बीबी पड़दा रहे थी, डोडी लगा थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार, नक बेसर नक पे बनी वह पैर थी हार हमेल, इतने सुंदर श्रृंगार करा करती, सोने के सुंदर करके लाख रुपए के हार गले में पहना करती थी, नक बेसर नक पे बनी वह पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन परमेश्वर के खेल। तो पुण्यात्मा हमने परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी ही जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति मीराबाई ने करी और गुण हम गावा उसके, देख कितने दोनों लाभ, मोक्ष भी करागी और यश भी उसी भक्त ही का होता है। यहां चर्चा भी भक्तों की चलती है भक्ति मार्ग में। जन जन की जुबान पाज उस बहन का नाम है, अगर वो इस काल के नक इस संसार की गुरकियां तो उल्टी हट जाती, कोई ना जाति भी पूछता उसकी। और भगत के साथ भगवान साथ रहता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, परमेश्वर ने स्वयं आकर किया और इस दास ने किया, और हो रहा है इतना ही कौन सा रुक लिया। एक परचून की दुकान में आग लागी, वह फिर बुझा बुझू दी, तो पुलिस वाले आवे इंक्वायरी करन और बादाम की एक मुट्ठी भरर गोज में गाल ले, जो बचे खुचे रह रहे थे, कोई काजू की भरर जेब में डाल ले। और सेठ ने बोले लाला जी कितना नुकसान हो गया, बोला उठ के वो तोड़ने लाग रहे थे, नुकसान तभी हो ही रहा है तुम कौन से डट रहे हो। तो ये संघर्ष अभी आपके आपके साथ भी अभी स्टार्ट ही है, कौन सा रुक लिया। कहने का भाव ये है कि इसमें करना पड़ेगा यदि कुछ पाना है तो। बोलो सतगुरुदेव।